पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।
वो परमात्मा अपने दास अपने श्रेष्ठ भक्तों को श्रेष्ठ आत्माओं को आकर मिलता है, वही बता रहा है। ये वेद बता रहे हैं और ये दास तो आपको पहले बताया करता है। ये वेद तो अभी देखने लगा है ये दास, अब ये और रहस्य मिल रहा है। रोज नई नई खोज इनमें हो रही है वेदों में, अब और नई मिल गई है। मनुष्यवत मनुष्य जैसा भगवान ने बता कसर ना छोड़ी वेदों ने परमात्मा की जो है ना डेफिनेशन बताने में। और परमात्मा कहते हैं कि पहुंचूंगा छन एक में जन अपने के काज, और अरणक्ष पूजो मार दूं और नरसिंह धर लूं साज, एक क्षण में आ जाता हूं मैं अपने भक्त के लिए। ऐसे ही नानक साहब कहते हैं नीच जात परदेसी मेरा छिन आवे छिन जावे वे, नीच जात परदेसी मेरा। कबीर परमात्मा को कहते हैं कि एक सेकंड में सतलोक से आ जाता है, एक सेकंड में चला जाता है, एक सेकंड में एक सेकंड के भी कुछ हिस्से में का बनारस से मेरे पास पहुंच जाता है और सतलोक दिखा लेता है। और यही प्रमाण पवित्र वेद बता रहे हैं कि वो परमात्मा कबीर अपने श्रेष्ठ भक्तों को आता है और एक बिजली की तरह सेकंड के अंदर लीला करता हुआ, यानी एक क्रीड़ा माने खेल सा करता हुआ। और परमात्मा की वाणी में लिखा गरीबदास जी को जो परमेश्वर कबीर जी ने अपना ज्ञान दे दिया, जब वो बताते हैं है महबूब सलोना वो और संतों नाल खिलौना वो, यानी अपने भक्तों के लिए तो खिलौना, एक सेकंड में जब भी याद करें तभी आ करके हमारे काम ठीक कर देता है। और फिर देखो वो परमात्मा जब आता है तो क्या करता है, अपने ज्ञान का प्रचार करता है। ये देखिएगा, ये आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का 26 मंत्र पढ़ा कि वो परमात्मा यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ और उनके विघ्नों को मर्दन यानी नष्ट करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में यानी तेजो में परमात्मा कबीर, हम इसको कबीर देव ही लिखकर चलें, विद्युत के समान बिजली की तरह क्रीड़ा करता हुआ, यानी एक जैसे बिजली चमके इतने माले नीचे आ जाता है, तो वर्णीय पुरुषों को श्रेष्ठ पुरुष भक्तों को प्राप्त होता है। फिर क्या करता है, 27 में क्लियर किया है, प्रेम की सैकड़ों धाराएं को नाना रूप में सतीथि को लाभ कर रही हैं, परमात्मा को प्राप्त होती हैं, प्रकाश पुंज परमात्मा को, प्रकाश पुंज तेज पुंज कहो चाहे प्रकाश पुंज कहो, तेज पुंज तंदे धर कर इस वधम को भेंट ही, प्रकाश पुंज को बुद्धि वृत्तियां विषय करती हैं, जो परमात्मा ये है दिव तृतीय पृष्ठ धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। पृष्ठ माने एक स्थान पर, पृष्ठ संस्कृत में आप शब्द को उसमें देखना, पृष्ठ माने एक स्थान पर ऊपर, तीसरे पृष्ठ पर यानी तीसरे लोक में, धूलोक में यानी सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, यानी एक देशी हुआ और प्रकाश रूप है, उसको बुद्धि वृत्तियां प्रकाशित करती हैं। अब एक दो ये क्या क्लियर चल रहा है कि परमात्मा कैसा है, मनुष्य सदृश है, साकार है, कहाँ रहता है, वो सतलोक में तीसरे लोक में रहता है, तृतीय धाम में। इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त 96 में, और देखो सूक्त 96 में कितना क्लियर कर रखा है मेरे मालिक। अब परमात्मा की वाणी सिद्ध होगी कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्मिन के फिरा मोतिया बंदरे। ये दिखत के तो आख्याले यानी विद्वान दिखाई दे थे ये सब धर्मों के जो आने वाले समय, क्योंकि ये ग्रंथ तो सही हैं पर इनको ना समझ कर जो हमारे प्रचारक गुरुजी थे वह नकली थे, उनका मोतिया बंद था, अंधे थे, अंधे माने ज्ञानहीन। आपके सामने है कि वेदों के ज्ञाता को हमें इनको पता नहीं वेदों में लिखा क्या है, तो दिखत के तो नैन चश्म इनका फिरा मोतिया बंदरे। जिसको सफ़ेद मोतिया हो जाता उसकी आँख बहुत स्वस्थ दिखाई देती हैं, बहुत अच्छी हैं, अगणाए दिखता होगा इसने पर उसने दिखता कती नहीं। तो ये महर्षि और ये ऋषि जो गुरु ये जितने मंडलेश्वर थे ये सारे सब का मोतिया बिंद था अज्ञान का। ये तो इस परमेश्वर ने आकर के अपने ज्ञान को कुछ पुण्यात्माओं को स्वयं दिया, फिर उनके उनकी अमृतवाणी आज हमारे सहयोग में समर्थन में हमें मिली, तो फिर इस दास का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया परमेश्वर ने, और फिर दास ने यो हॉस्पिटल खोल लिया अज्ञान के मोतियाबिंद हटाने का। अब लाखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया, साफ कर दिए। अब इस प्रकार पूरे पृथ्वी पर ये मोतियाबिंद का नाश हो जाएगा और बुराई छूट जाएंगी, बड़ी प्यार से दंता रहा करेगी। अब हमारे भक्त थोड़े से हैं, 10-12-11 लाख होंगे, तो इनमें और समाज अरबों और में है खरबों में, तो हम चले हैं सीधी लाइन पर, यानी ठीक चले हैं तो घर का सदस्य कोई बाधक बन जाता है, या कोई रिश्तेदार दुखी करने लग जाता है, यानी कोई न कोई आंट अड़ांस हमारी मर्यादाओं को बाधा करता है, तो हम कुछ अशांति आ जाती है। और जब पूरा समाज एक रस हो जाएगा फिर सभी एक ही लाइन पर चल पड़ेंगे, दुख रहे ना लड़ाई रहे ना खेचा ताणी ना दहेज लें ना चोरी करें, दुश्मन समझेंगे दहेज को, देख लेना एक समय ऐसा होगा, क्योंकि वो बाहर क्यों अपने सिर पर धरें जो फेर देना होगा। आज मान ले कोई दामाद बनकर और ले रहा है, जोर जबरदस्ती कर रहा है, दबाव देता है, चल आज तक उस लड़की के बाप पर ले लेगा, फिर वो बाप तो उसका दामाद बनेगा किसी जन्म में हैं, और वो बनेगा छोरी आला, और फिर वो उस पर लेगा, तो परमात्मा जब समझ में आ जाएगी भाई वो बखेड़ा क्यों पैदा करा हमने, एक लेवा एक देवा दूतम को किसी का पिता नहीं पूतम, तो फिर हम हट जाएंगे इस बुराई तक, हमारे हाथ उल्टे आ जाएंगे। और किसी से लेकर के दान आप दहेज लेकर के यदि धनवान बनना चाहते हो सपना भी मत लेना, भूल जाना इन बातों को, ये तो आपके ऊपर कर्जा बन जाता है। जिसने अपनी बेटी दे दी 18-20 साल पाड़ पोस और पढ़ा के रह गया उसके पास, तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, हमने माया माया दिखा है, भगवान नहीं दिखता ना उसका संविधान दिखाई देता, फिर हमारा मोतियाबिंद हट जाएगा, फिर हमें सब कुछ दिखाई देगा, हम गलत नहीं कर सकते। इस प्रकार समाज में एकदम परिवर्तन आओगा, आप देख लेना। पर इस समय थोड़ा सा लगेगा क्योंकि यो अज्ञान अंधकार घना फैल गया, और एक यो दास इस गेला टकरों टकरा होने वाला, ये उल्टे ज्ञान देने वाले लाखों और करोड़ों ये संत, लेकिन सच्चाई के सामने ये टिक नहीं सकते। और यो ज्ञान परमात्मा का ऐसा है, कबीर जी ने कहा था, और ज्ञान सब ज्ञान डी, यो मेरा कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का विकृता चला मैदान। अब ये सारे ढंग लाग रहे, इनके बनावटी ऋषि बने बैठे थे, इन सब की पालस उतर गई। अब देखो तो इस प्रकार ये एकदम, ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 96 इसमें 16 नंबर श्लोक में ये पूछा है कि परमात्मा, यानी प्रश्नोत्तरी ये आप की है परमेश्वर ने, हे परमात्मन सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ जो ये नाम है ना, जो आप तुम्हारी संज्ञा है, ये कहना था आप उसका ज्ञान कराएं। इसका अर्थ है कि हे परमात्मा जो सबसे आपका श्रेष्ठ नाम है, इसका नाम माने नाम लिखना था, जो आपका श्रेष्ठ नाम है या नाम लिखना था आप, क्योंकि नाम है मूल संस्कृत में, आप उसका ज्ञान कराएं, आपका के नाम है। अब इसमें 17वें में उसका नाम का ज्ञान कराया है कि वो परमात्मा शिशु जगानम हरियंतम मर्जंती सुबंती वहीना मरुतो गणेन कबीर गिरभी काविना कबीर संत सोम पवित्र अत्य तिरेभन। ये कबीर संत सोम, वो कबीर परमात्मा एक संत रूप में आता है। वो कबीर जो है, जो कबीर वाणी द्वारा अपनी महिमा आपे व्याख्यान करता है कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, यानी कविताओं से, वो संत कवि, वो संत सोम कबीर, वो कबीर, हम इसको कबीर देव बोल दें, वो कबीर देव है, वो अमर पुरुष, सोम माने अमर पुरुष, जो अपनी कबीर वाणी द्वारा, जो शिशु जगान माने एक मनुष्य के बच्चे के रूप में जो प्रगट होता है, वो परमात्मा अपने बहुत बड़े एक भगत वृंद के लिए अपनी अमृत वाणी, कबीर वाणी, काविना माने कविताओं के माध्यम से उच्चारण करता है। वो परमात्मा कबीर अमर पुरुष ही होता है, अपनी पवित्र वाणी को ऊंचे स्वर में बोलता है। इन्होंने क्या किया कि कबीर वाणी को शिशुम का अर्थ ठीक नहीं किया इन्होंने, सैति सूक्ष्म क्रोति प्रलय काले जगत दिति शिशु परमात्मा, शिशु परमात्मा, शिशु परमात्मा, उस परमात्मा को, शिशु माने बालक रूप में प्रगट परमात्मा को, जो सदा प्रगट है, यानी जानबूझकर जो प्रगट होता है, यहाँ सतलोक से आता है, जो अत्यंत कमनीय है, उसको उपासक लोग बुद्धि विषयों से उसकी स्तुति, उसके गुणों का वर्णन करते हैं, विद्वान लोग उसी गतिशील परमात्मा का, गतिशील जो सर्वव्यापक है, तो गति के करेगा, वो तो सब जगह है ही, फिर गतिशील परमात्मा का गुणों के द्वारा वर्णन करते हैं। और कवि लोग, देखो कवि लोग वाणी द्वारा, अरे तेरा गजब, कबीर गिर भी हम यहां लिख दें, कबीर माने कबीर वाणी द्वारा, कबीर माने कबीर, कबीर वाणी द्वारा, इन्होंने लिखे रखा कबीर माने कबीर, कबीर लिख दें, कबीर वाणी द्वारा कविताओं से, कविना माने कविताओं से, वो कबीर परमात्मा अपनी कबीर वाणी द्वारा कविताओं से अपनी वाणी को कविताओं से बोलता है, यानी कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से। वह अमर पुरुष, सोम पुरुष माने अमर पुरुष, पवित्र, पवित्रम, पवित्र यह परमात्मा सूक्ष्म प्रकृति को रेभन अतिक्रमण करता है, गरजता हुआ, अभी ना ओट पटांग कर रखे इसका, वो परमात्मा अपनी अकबीर वाणी को उच्चारण करके बोलता है जोर जोर से, चारों युग में हम पुकारे कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा खुद कह रहे हैं कि चारों युग में हमने आवाज लगा लगा कर रूह के मार मार के ये सत्य, ये ज्ञान सच्चा बताया, और मेरे संतों ने, जिस जिस संत, मेरे कृपा पात्र संतों ने भी यही आवाज लगाई मेरे वाले ज्ञान की। और ये परमात्मा के सच्चे ज्ञान रूपी हीरे माणक मोती बरसे, इस साधना से आपके इतनी जबरदस्त कमाई हो जाएगी, आप ये नहीं करते, ये जग चुगता ढेल रे, ये कंकर पत्थर डले इकट्ठे करता फिरता है, इधर उधर धक्के खा के नकली संतों के पास जाके, पर भी लेन जात है दुनिया हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। परमात्मा आखिर में रो के कहते हैं, ये पर भी लेन जात है दुनिया, धके खनते अंडे जोड़ा पर तालाबा पर नहा जाते हैं, पर हमारा ज्ञान किने नहीं सुनिया, हमारा ज्ञान किसे नहीं सुना। अब ये समय है, अब सुनेंगे आपके परमात्मा आपके ज्ञान को आपके बच्चे, क्योंकि आपने ये समय निर्धारित किया हुआ है। आगे क्या लिखा है, वो परमात्मा कहाँ रहता है, जैसा कि अभी आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 में लिखा है, संस्कृत में इन्होंने तुलट पुलट कर रखा था, कि वो सतलोक के तीसरे भाग के एक स्थान पर, पृष्ठ माने एक स्थान पर स्थित है। यहाँ देखो सतलोक में, अब यहाँ देखो 18वें में स्पष्ट किया है ऋग्वेद मंडल नंबर 9, अब ये 96 है, वो 86 था पहले, 96 के चल रहे हैं 16, 17 और ये 18वां, 18वें में स्पष्ट किया है, यह है ऋषि मना, ये ऋषिकृत, ऋषिकृत सरसा सहसर अणिथ पदवी कवि नाम, तृतीयम धामम महिषे शिष्य संत सोम सोमो, इसको सोम बोलते, विराजमानु राजति स्तूप। स्तूप का अर्थ होता है गुम्बज, यानी गुम्बज में वो तृतीय धाम, तीसरे धाम में परमात्मा विराजमान। इन्होंने अनुवाद किया है, पर इनका देखेंगे जब जच्चेगी मारे, क्योंकि इनको हम संस्कृत के विद्वान मानते थे। सोम स्वरूप परमात्मा यानी अमर पुरुष परमर परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा तृतीयम धामम देवयान पितृयान इन दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है। इसमें सीधा लिखना था वो विराजमान है। इन्होंने ज्ञान योगी और अड़ा दिया इसमें, बता इसमें मूल संस्कृत में कितना ज्ञान योगी है, इसमें कितना भी को ना। ऋषि मना ये ऋषि कृत सवसर सा सेंसर अणित है पदवी कवि नाम तृतीय धामम, ये तीसरे धाम है महिषी शिष्य संत सोम विराजमान राजति स्तूप। वो परमात्मा वो पर, इसका अर्थ क्या है कि जैसे यहाँ लिखा है ना, वो संत कबीर संत सो, वो परमात्मा कबीर ही होता है जो अपनी वाणी को कबीर वाणी द्वारा बोल के और कविताओं के माध्यम से कहता है, वो परमात्मा संत रूप में प्रकट होता है। संत कहो चाहे ऋषि कहो, तो यहाँ कहते हैं ऋषि मना या ऋषि कृत, जो संत रूप में या ऋषि रूप में परमात्मा प्रकट होता है उस ऋषि के द्वारा, कृत माने उसके द्वारा बोली गई, सहस्र अनिथा माने हजारों वाणी बोलने से, कवि कवितों कविताओं के मत के द्वारा बोलन तय है उसके द्वारा लिखी गई है, तो उससे वो कवि प्रसिद्ध कवियों की पदवी प्राप्त करता है। और वो ऋषि मना माने साधु स्वभाव के भक्तों के लिए उनके ऋषि कृत यानी उस ऋषि द्वारा यानी संत रूप में प्रगट परमात्मा द्वारा लिखी गई वो वाणियाँ, संस्कृत अनथ माने हजारों वाणी, लाखों वाणी, असंख्य वाणी, वो स्वर्ग सा माने स्वर्ग जैसी स्वादिष्ट आनंददायक होती है उनके लिए। और वो परमात्मा कहाँ रहता है कि तीसरे धाम की तृतीय धामम महिष यानी उस सुदृढ़ पृथ्वी को शिष्य माने स्थापित करके, जैसे अनामी लोक में रहता भगवान, वहाँ से फिर नीचे की तीसरे धाम अनामी लोक तय अलख लोक, फिर अगम लोक और फिर तीसरा सतलोक, उसमें आकर के वो एक मनुष्य रूप में एक टिल्ले यानी गुम्बज के अंदर विराजमान है। इसमें कितने ज्ञान योग्य नहीं, इन्होंने तो अड़ंगा करण का ठेका ले रखा था। ये देखो वो सोम स्वरूप परमात्मा यानी सत्य पुरुष अमर पुरुष, सोम माने अमर, अमर परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा वो बड़ा भगवान है। तृतीयम धामम इसको देखेंगे संस्कृत को, वो देवयान और पितरान है, इन्होंने जैसा ज्ञान था अपने तरफ से बोला है, लेकिन वो तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है। ये ज्ञान योग्यते ने अड़ंगा करना था, इसका कर दिया, जो अनुराजति यानी तेजो में शरीर में प्रकाशित है, इन्होंने ऐसा लिख दिया। कवि नाम पद्मी जो कर्णदर्शियों की पदवी अर्थात मुख्य स्थान है, सेंसर अनित अनित अनंत प्रकार की सत्वनीय, अब सेंसर अनित का अर्थ होता हजारों प्रकाशंक प्रकार की अनंत प्रकार की वाणी, ऋषि मना सर्व ज्ञान के साधन स्वरूप मन वाला वह परमात्मा जो ऋषिकृत सब ज्ञानों का प्रदाता, ऋषिकृत माने उस ऋषि रूप में प्रगट उस संत द्वारा ऋषि द्वारा की गई यानी बनाई गई वो वाणियाँ बोली गई, स्वरसा सूर्य आदि को प्रकाशक है तरह जरूरी। अपुण आत्माओं आगे देखो, ओहो, और 20 में फिर कमाल कर दिया, साकार बता दिया, अब 17-18 में नाम बता दिया भगवान का, के नाम है कबीर, कबीर देव, और 18 में ये भी बता दिया कि वो तीसरे धाम में साकार विराजमान है, बैठा है। एक देशीय परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है, वो तो एक देशीय एक स्थान पर रहने वाला, लेकिन उसकी उसकी जो रेंज है भगवान की जो निकल रही शक्ति है वो सर्वव्यापक है। परमात्मा की जो शक्ति है वो उस शक्ति व्यापक है, सर्वव्यापक है, और उसका कंट्रोलर वो स्वयं परमेश्वर है, लेकिन परमात्मा साकार है। अब कई भ्रमित कर देते हैं कि परमात्मा साकार है, मनुष्य जैसा है तो अंतर्यामी क्यों करोगा, अंदर की क्या जानेगा वो। अब जैसे एक ये अल्ट्रासाउंड की मशीन है, या साकार है और अंदर की सारी चीज़ बाहर निकाल जान लेती है, यदि यह भी अंतर्यामी है तो भगवान ने क्या दिक्कत आओगी अंतर्यामी होने में, नस नस ढूंढ लेता है अंदर की कौन सी बीमारी की थोड़ी सी भी टेक वहां भी बाहर आ जाती है, तो परमात्मा क्यों नहीं अंतर्यामी हो सकता जो साकार होकर के। तो ये उल्टी थ्योरी फिट कर दी अनाड़ियों ने, ज्ञान था को ना अपनी अपना ही विधान अपना सिद्धांत बना दिया भगवान को निराकार सिद्ध करने के लिए, वेदों और ग्रंथों का अनर्थ कर डाला, उनके अर्थों का अनर्थ कर दिया। अब देखिएगा यही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 चल रहा है। अब आपने 18 श्लोक पढ़ा, अब 20 में देखो। ओह, वह परमात्मा जिस प्रकार एक संघ को उसका सेनापति प्राप्त होता है, इसी प्रकार ब्रह्मांड रूपी कोष को प्राप्त होकर उच्च स्वर से गरजता हुआ, ओह उच्च स्वर से गरजता हुआ वह ब्रह्मांड रूपी विस्तृत प्रकृति खंड में भली भांति प्रविष्ट होता है। यानी एक देश में है, ये साकार है, एक तरफ से चलकर वहां आया, जैसे कि मरिय माने मनुष्य, जैसे कि मनुष्य सोबर शरीर को धारण करता हुआ अत्यंत गतिशील पदार्थों के समान प्राप्ति के लिए गतिशील होता हुआ धनों के लिए कटिबद्ध होता है, उसी प्रकार प्रकृति रूप ऐश्वर्य को धारण करने के लिए परमात्मा सदैव उद्दत है। अब देखो जिस प्रकार मनुष्य सोबर शरीर धारण करता है, ऐसे ही परमात्मा और अत्यंत गतिशील पदार्थों के समान प्राप्ति के लिए गतिशील होता है, यानी चलता है। जिस प्रकार मनुष्य क्लियर कर रहा वेद के जैसे मनुष्य शरीरधारी है और अपने काम के लिए वो भी प्रस्थान करता, ऐसे ही परमात्मा उस सतलोक से चलकर अपने जहाँ पर वो विराजमान है उस तीसरे धाम से चलकर, और यहाँ जैसे एक राजा सेनापति की तरह सभापति की तरह मुखिया होता है ऐसे बहुत बड़े सेना का, तो वो ऐसे एक गुरु रूप में बहुत बड़े भगत वृंद का हेड होता है, मुखिया होता है। 64 लाख से हुए थे कबीर परमेश्वर के सन 1398 से लेकर सन 1518 तक 120 वर्ष में, तो वो 64 लाख शिष्यों का वो मुखिया था। वह वेद बताते हैं कि वो जैसे सेनापति होता है एक बड़ी सेना का समूह का, ऐसे वो परमात्मा उनका मुखिया होता है और वो ज्ञान देता है, हजारों वाणी दे असंख्यों वाणी बोलता है, वो वाणी उनके द्वारा बोली गई वाणी उनके उस भगत वृंद के लिए उस भगत समूह के लिए अमृत जैसी प्यारी होती है, बहुत प्यारी लगती है उनको उनकी अमृत वाणी। जैसे दास आपको परमात्मा की वाणी बोलकर सुनाता आत्मा गदगद होती है, यह परमेश्वर की बोली हुई वाणी है जो गरीबदास जी को दिया ज्ञान, वो परमात्मा ने अपने कंप्यूटर से अपने से गरीबदास के कंप्यूटर में इसका फैक्स कर दिया था, डाउनलोड कर दी। अपने आत्माओं परमात्मा क्या बताते थे और हम उस परमेश्वर को ना समझकर, अब आपको दिखाते हैं इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 82 यानी 82 में कितना क्लियर किया है ये परमात्मा। ओए होए, परमात्मा की परमेश्वर की एक वाणी का आधा हिस्सा भी गलत नहीं कर सिद्ध कर सकता कोई। क्या बोला था मालिक ने, मोती मुक्ता दर्शत ना ही ये जग है सब अंदरे, दिख तुके तो नैन चश्मे इनका फेरा मोतिया बंदरे। कितना निर्मल ज्ञान वेदों में लिखा है और इनका मोतिया बंद हो रहा था, ये समझे नहीं और विद्वान कवाम थे। ये देखिएगा परमेश्वर की अमृतवाणी, परमेश्वर ने कहा था कि वेद मेरा भेद है, वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाहीं और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नाहीं। अब तुम कमाल कर रखा है कि वो परमात्मा राजा की तरह दर्शनीय है, यानी जैसे अभी आपने सुना कि वो जैसे एक बहुत बड़े समूह का नेता होता है, यानी बहुत बड़े अनुयायी बन जाते हैं उनका मुखिया होता है। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 यानी 82 मंत्र नंबर 1, इन्हीं का अनुवाद पढ़िए। सोम, सोम का अर्थ होता अमर पुरुष, वो अमर परमात्मा, चलो जो सर्व उत्पादक प्रभु अरुष प्रकाश स्वरूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला यानी पापनाशक, कवि रंगहारी, राजेव राजा के समान, स्पष्ट लिखा संस्कृत में राजेव राजा की तरह, राजा के समान दर्शनीय है। बता भाई, अब निराकार क्यों कर हो गया, उन्होंने पूछा है नंद ध्यान है, और वह पृथ्वी लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है, और वर्णीय पुरुषों को, श्रेष्ठ भक्तों को, वर्णीय पुरुषों माने श्रेष्ठ भक्तों को जो दृढ़ भक्त हैं उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। कति तोड़ पाड़ रोग काट रखे वेदनत है, वही समर्थन परमात्मा का दे रखा है कि वह श्रेष्ठ वर्णीय माने श्रेष्ठ भक्तों को, पुरुषों को जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, उनको मिलता है, फिर उनके अज्ञान को साफ करता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाला स्थानों को आधार बनाकर होता है, इसी प्रकार उक्त गुणों वाला परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। ये तो इन्होंने उलझा दिया है, इसका अर्थ है कि वो परमात्मा बिजली के समान अपने उस असाधम माने उन स्थानों से ऊपर के योनि माने आधार से ऊपर के स्थानों से बिजली की जैसी गति से आकर आता है, और यहाँ आवसी यानी यहाँ आकर के असवी यहाँ आकर के और कुछ समय रहता है। इतने ढेर सारे प्रमाण परमात्मा ने खजाना दे दिया इस कतियो पुण्यात्माओं, और इब भी मारे समझ में नहीं आओगे तो मारे कैसे, फिर नालायक नहीं जो भगवान को अब भी नहीं समझेंगे। तो क्या बताते हैं, मन माणिक लहर समंदरे मुरजीवा नगसीप न सायर वो निर्मल आनंद कंदरे। मन माणिक लहर समंदरे मुरजीवा नगसीप न सायर वो निर्मल आनंद कंदरे। मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चम इनके फेरा मोतिया बंदरे। ये वाणी परमात्मा की अब आपके समझ में आओगी कि सचमुच ये जितने मैं ऋषिकाओं थे तो अंधे थे, ज्ञानहीन थे, इनको मोतिया बंद हो गया था सफेद। अब परमेश्वर की वो वाणी जो परमेश्वर कबीर देव ने जो अपने प्यारी आत्मा अपने श्रेष्ठ भक्त गरीबदास जी के कंप्यूटर में अंतःकरण में डाउनलोड की, फिर गरीबदास जी ने अपने कंप्यूटर अपने यानी अपने मुखारविंद से उनको बोला, क्या बताया, नर नारायण देही पाके जो कटिया न जम का फंदरे। रतन अमोली दर्शत नाही ढक है वाकी जंदरे। कि जिसको यो ऐसा सुंदर शरीर, मनुष्य जैसा शरीर भगवान ने अपने जैसा नर नारायण दे ही पाक है, मनुष्य जैसा शरीर पाक, परमात्मा जैसा शरीर पाक है, और कटिया ना यम का फंदरे, अरिबी जकाल का जाल नहीं कटिया तो धिक्कार है वाकी जंदरे, उनकी जिंदगी को भी धिक्कार है ऐसे मनुष्य को। पूर्ण ब्रह्म रते अविनाशी, पूर्ण ब्रह्म रते अविनाशी जो भजन करे उस गोविंद रे। भाव भक्ति जाहिर दे होई फिर क्या कर है सुरपति इंद्रे। इंद्री कर्म ना लगे लगारम जो भजन करे निर्दुंदरे। गरीब दास जग कीर्ति होगी जब लग सूरज चंद्रे। कहते हैं सत्ती सच्ची भक्ति करोगे ना तुम्हारी इतना आनंद आओगा, आपको यहाँ भी सुख और सतलोक में जाओगे, आपके सामने यहाँ देवताओं का राजा इंद्र का राज्य भी आपके लिए व्यर्थ होगा, वो कुछ भी नहीं आपका जो सुख आपको होगा इस भक्ति से। अब परमेश्वर की वो वाणी गरीबदास जी महाराज ने आज से 250-300 वर्ष पहले बोली थी, और उनको आज तक वो गरीबदास जी के अनुयायी नहीं समझ पाई ये कह कहना चाहो थे, क्योंकि परमात्मा ने कबीर सागर में कबीर जी ने लिखा है परमेश्वर जी ने कि ये बर्म पंथ तक जो गरीबदास पंथ है ये सब महिमा तो मेरी ये गाओगे और मेरी वाणी को पढ़ करके इसका निर्णय करने की चेष्टा करेंगे, पर इनको कोई हिसाब किताब आवे को ना इसका, और असंग जन्म ये सथिर सतलोक नहीं जा सकते, फिर बर में पंथ में गरीब दास वाले पंथ में हम ही चले आवें। ये दास उस गरीब दास पंथ से ही अलग हुआ है, और परमात्मा की वाणी तो ग्रंथ साहब में दास ने, इस कबीर पंथ सागर में तो दास ने सन 2005 में देखी, और सन 1988 से दास को उपदेश प्राप्त हुआ था मेरे गुरुदेव तक, जो गरीबदास पंथ से संबंधित थे, और 1994 में दास को आदेश हुआ था उपदेश देने का। 1998 में हमने अपना अलग आश्रम क्रोथा में बना लिया, और 1905 में फिर हमने ये देखे गरीब कबीर सागर देखा, तब उसमें पाया ये वो तेरे की, ये तो परमात्मा ने खेल पहले लिख खेल रखा था, ये ऐसे करना था कि बर्म में पंथ जो गरीब दास वाले पंथ में हम ही आएंगे। परमेश्वर ने कहा आप ना आए तो दास भेज दिया आपका अपना, इसमें कुछ थोड़ा बहुत देख लिया होगा कि यू कर देगा मेरे वाले काम ने, लेकिन करना कराना तो उसी ने है, उसके हुक्म बना दिया पत्ता भी नहीं हिल सकता। कहते हैं भक्ति मुक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भट प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पा थेलंदा, उस परमेश्वर कबीर जी के हुक्म बिना तो पत्ते का एक कुणा भी ना लाए। तो क्या बताते हैं, अवगत राम कबीर है चकवे अविनाशी, ब्रह्मा विष्णु महेश से ब्रह्मा विष्णु वजीर है शिव करे खवासी। अवगत राम कबीर है चकवे अविनाशी, ब्रह्मा विष्णु वजीर है शिव करे खवासी। वजीर माने मिनिस्टर मंत्री, ये ब्रह्मा विष्णु और ये शिव जी तो यहाँ एक एक मंडल में, एक डिवीजन में, एक स्टेट में, ये तो मिनिस्टर हैं, एक एक गुण के। रजगुण ब्रह्मा, रजगुण विभाग का मंत्री है ब्रह्मा जी, और सतगुण विभाग के मंत्री हैं विष्णु जी, और तमोगुण विभाग के मिनिस्टर हैं शिव जी शंकर भगवान। तो कहते हैं पूर्ण अवगत राम कबीर है चकवे अविनाशी, चकवे माने चक्रवर्ती भगवान, यानी जिसका पूरे ब्रह्मंडों पर चक्रवर्ती राजा उसको कहते हैं, जो पूरी पृथ्वी का शासक हो। तो चकवे अविनाशी, अवगत राम कबीर है चकवे अविनाशी, ओए होए, ये सौसम वेद आपको बता रहा हूं कितने गूढ़ रहस्य है सौसम वेद में। ये पांचवा वेद जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 और 34 में कहा है कि वो यथार्थ ज्ञान विस्तार से जो परमात्मा की महिमा और उसकी उसके विषय पाने की विधि वो साधनाएं उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी पूर्ण परमात्मा की वाणी में विस्तार से कही है। और वो जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 और 13 में तत्वदर्शी संत की तरफ से कहा है कि उस उन तत्वदर्शी संतों से पूछो, वो यथार्थ ज्ञान जानते हैं। ऐसे कुरान शरीफ के सूरत फुरकानी आयत नंबर 59 में 59 में कहा है कि उस कबीर परमेश्वर जिसने छह दिन में सृष्टि की, सातवें दिन तख्त पर जा विराजा, वो अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर है, अल्लाह अकबर है, बड़ा रहमान है, उसकी खबर किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। तो ये वो वाणी ये दास आपको सुना रहा है जो उन सदग्रंथों से आगे की है, उन वो तो ज्ञान है ही इनमें इसमें, लेकिन उनमें ये ज्ञान नहीं, उन वाला ज्ञान पुराणों वाला वेद वाला बाइबल वाला परमात्मा की इस पांचवें ज्ञान में वो भी है पांचवें वेद में, लेकिन उन वेदों में ये कौन, उन ज्ञानों में ये नहीं है उनके सदग्रंथों में। तो वो ये इसलिए बताया कि उसको तो तत्वदर्शी संत बताओगा, अरे इसने कोई पढ़ लेगा तो समझ में आवे नहीं, ये तो दास पर मेहर करी परमेश्वर कबीर जी ने, तो ये आपको समझाने योग्य हुआ ये तुच्छ बुद्धि जीव। अवगत राम कबीर है चकवे अविनाशी, अवगत राम अविगत जिसकी गति को कोई नहीं समझ सका, वो कबीर राम जो है वो कबीर भगवान अल्लाह कबीर वो है चक्रवर्ती भगवान, चक्रवर्ती और अविनाशी, चक्रवर्ती माने पूरे ब्रह्मंडों का मालिक कुल मालिक है। अवगत राम कबीर है चकवे अविनाशी, ब्रह्मा विष्णु वजीर हैं शिव करे खवासी। खवासी माने नौकरी, खवास माने नौकर, ये तो इनके नौकरी करते हैं परम पिता के कबीर भगवान की। इंद्र कोट अनंत है जाके प्रति हारा, वरुण कुमेर धर्मराय रे ठाडे दरबारा, ये धर्मराज यहाँ का धर्मराज चीफ जस्टिस जैसे कहते हैं भगवान के दरबार में हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, इनको बैठने का भी मत नहीं, वहां बैठ जाओ जाके। 33 कोट देव तारिसी सैंस 88 वैष्णो कोट अनंत हैं गुण गावे राशि। 9 योगेश्वर नाद बरसुर पूरे संखा सनकादिक संगीत है वो अवतल गढ़बंका। शेष गणेश रु सरस्वती और लक्ष्मी राजे सावित्री गौरार टैगण शंख विराजे। उस परमेश्वर की चाहत इन सभी को है। अंत कोट मुनिषाद हैं गण गंधर्व ज्ञानी अर्प पिंड और प्राण को जा शंखो दानी। अरस कुरस पर सेज है तन तबक तिराजी एक पलक में करत है वो राज विराजी। अलख बिनानी कबीर को रंग खूब चवाया एक पानी की बूंद से संसार बनाया। अंत कोट ब्रह्मांड है कुछ वार न पारा लख 84 खान का तू सृजन हारा। सूक्ष्म रूप स्वरूप है बहु रंग बिनानी गरीब दास के मुकुट में वो हाजिर परवानी। अब परमात्मा की महिमा इस सवसम वेद में बताई है कि वो परमात्मा कबीर है जिसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश उसके नौकर हैं। अब क्या बताते हैं परमात्मा, बताते हैं अपने अमृतवाणी में, ये दृष्टि पड़े सो धोखारे, ये दृष्टि पड़े सो धोखारे, खंड पेंड ब्रह्मांड चलेंगे ये छरना रसी लोकारे। कहते हैं दृष्टि पड़े सो फना है धर्म धर अंबर कैलाश या कृत्रिमबाजी झूठ है तुम सुरत समो वो श्वास। ये जो भी तुम्हें ये ब्रह्मांड दिखाई देते हैं ये सब नाशवान है, एक दिन सबका विनाश होगा। ये कृत्रिमबाजी ये बनावटी है ये सारे, ये झूठ है, तुम अपनी भक्ति करो यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा में काल के जाल में फंसे मत रह जाना। अब क्या बताते हैं, दृष्टि पड़े सो दोखारे, खंड पेंड ब्रह्मांड चलेंगे थिरना रैसी लोकारे। थिर माने ये सथिर नहीं है ये लोक भी। अब ये शरीर कितना सुंदर है, एक दूसरे बिना हम रह नहीं सकते, भाई बहन बेटी पति पत्नी पुत्रों का कितना प्यार है। और एक सेकंड भी धोखा है, मृत्यु हुई ना और ठा कर फूक देंगे दो मुट्ठी राख, उसमें ढूंढ लियो दे स्वरूप यू कितना पा भी जाती सा, ये धोखा है, फूक गया सारा और कुछ भी को नहीं हो, कुछ भी नहीं, ये धोखा है। ऐसे ये ब्रह्मांड धोखा है भाई, दृष्टि पड़े सो धोखारे, दृष्टि पड़े सो धोखारे, खंड खंड पेंड ब्रह्मांड चलेंगे ये थरना रैसी लोकारे। रज गुण ब्रह्मा तम गुण शंकर यो सतगुण सतगुण विष्णु कहावेरे। चौथे पद का भेद नहीं आ रहा कोई बिरला साधु पावेरे। कहते तुम ही रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी गुण जे पड़े हो और उस चौथा पद यानी ब्रह्म तक के विषय में जानकारी भी कोई तत्वदर्शी संति ठीक ठिकाने का देगा, इनका बिना बेरा इन रग यजुर है श्याम अथर्वण ये चारों वे चहों वेद चतुभंगी रे। ओए ओए कितनी प्यारी वाणी बोली परमात्मा ने, रग यजु श्याम और अथर्वण ये चारों वेद चतुभंगी रे। सूक्ष्म वेद बाच साहेब का सोहन सा सत्संगी रे। के ये ऋग्वेद यजुर्वेद श्याम वेद और अथर्ववेद ये भी चितभंगी, कहते इनका इनके इन अभिनयों का है मैं तो इतना जानता हूँ और वो उस तत्वदर्शी संतों ने पूछो, यानी ये भी चितभंगी है, ये भी निर्णायक ज्ञान ने इनके पास इनके अंदर। और सब संवेद बाच परमेश्वर का सो हंसा सत संगी रे, जो इस तत्व ज्ञान यानी सार जो परमेश्वर की वाणी वाला जो पांचवा वेद है इसने जो पढ़ है और इसको समझ है वो है सत्संगी, सत वो है सत्य के जानने वाला, वो सत्संगी यानी वो सत्य का साथी है और सत्य मार्ग पर चल रहा है, अन्यथा कोई सत्य मार्ग पर नहीं है, सब उवा बाई बकते हैं। अलंकार अघ है अनुरागी दृष्ट मुष्ट नहीं आवेरे। अकै लोक का अघ है अकै लोक का भेद नहीं आ रहा वो चार वेद क्या गावे रे। अब अकै लोक का कहते हैं वो भेद और न्यारा है, इभी उन्होंने तीसरे धाम का तो कह दिया, क्योंकि यहां तक का ज्ञान इसमें दिया। अकै लोक जो चौथा लोक है कहते हैं उसके विषय में ये वेद के गावे, इनको ज्ञान ही नहीं। चार वेद क्या गावे रे। आव जाव सो हंसा कहिए परमहंस नहीं आया रे, पांच तत्व तीनों गुण तूरा या तो कहिए माया रे, सुन मंडल सुख सागर द्रिया परमहंस परवाना रे, सतगुरु मैली भेद लखाया वो सतलोक निदाना रे, अगम दीप अमरापुर कहिए हिलमिल हंसा खेले रे, दास गरीब देश वो दुर्लभ कोई सच्चा सतगुरु बेले रे। वो देश बहुत दुर्लभ है सतलोक में जाना, बालका खेल नहीं है, लेकिन सच्चा सतगुरु वहां पर आपको पहुंचा देगा। जालन जुल्हा जारत लाई, गरीबदास जी परमात्मा की महिमा बता रहे हैं, जुल्हा यानी दानक रूप कबीर की, नानक साहब को मिले परमात्मा बेई नदी पर, फिर सतलोक में सचखंड दिखाया, फिर बनारस में बैठे पाए उस दुलाहे रूप में, धानक रूप में, जब नानक जी ने कहा था भाई सूरत मलोक की वेश, ये मोहनी मूर्त या बैठी रहे लोगो यो बैठा भगवान, भाई सूरत मलोक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करता लोगो, यो धानक रूप रहा करता, यो बैठा दुलाहे रूप में भगवान, जो अब कौन सुने उस परमात्मा की प्यारी आत्मा की, सब मजाक करन लग गए, देख यो पंजाब तो आ गया, यो भोला भगत एक दानक न भगवान बतावे। और बार बार कहा कि नीच जात परदेसी मेरा छिन आवे छिन जावे रे, मेरा तो वो परमात्मा है, मेरा परदेसी मेरा मालिक है। तो यहां गरीबदास जी कहते हैं जालिम जुल्हा जारत लाई ऐसा नाद बजाया है। अब गरीबदास जी कहते हैं कि ईसा ज्ञान दे दिया मेरा ताग ला दी न, और ऐसा ढोल पीट दिया के बताऊं चारों वेद फेल कर दिए। जल्यम जुल्हा जारत लाई ऐसा नाद बजाया है, काजी पंडित पकड़ पछाड़े इनको जवाब नहीं आया है। कहते काजी पंडित भी थोथरे, उनका प्रश्न उत्तर किया उनके पास जवाब नहीं था। सट दर्शन सब खारज कीने दोनों दिन चिताया है, सट दर्शन भी जो हिंदुओं के गुरु बन रहे थे ये सट दर्शनी कहते ये भी फेल कर दिए, और दोनों धर्मों को परमात्मा ने हिंदू और मुसलमानों को सत्य ज्ञान दे करके और चिताया है, नहीं उनको ज्ञान दिया है, दोनों धर्मों के गुरु का है परमात्मा। सुर नर मुनिजन भेद ना पावे दोहों का पीर कहाया है, दोनों का गुरु, हिंदुओं का भी गुरु का और मुसलमानों ने भी उसको गुरु माना पीर माना। शेष महेश गणेश्वर था के जिनको पार नहीं पाया है, अब जया वाणी के ब्रह्मा विष्णु महेश भी थक गए इन न भी ज्ञान को नहीं। गरीबदास जी की ये बात वाणी अगर हम सुना जा वैसे तनो कहो तो मूर्ख ने लिख रखा है, हैं बता नो कह ब्रह्मा विष्णु महेश ने ज्ञान को नहीं, वो तो सुप अजरो अमर है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी है। अब उनकी उनके इतिहास में नो का नो लिखा जो परमात्मा ने लिखा था। पुणात्मा यहाँ ये कंसेप्ट क्लियर करना बार बार अति आवश्यक हो गया, क्योंकि ये प्रचार जो हो रहा है ये विश्व स्तर पर होगा एक दिन, और इसमें मान लीजिए कोई सुन रहा है भक्त और बाद में सुन रहा है इतना करके हमने छोड़ दिया, तो वो नो कह ले भाई ये अच्छा नो कह ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी जवाब कोई ज्ञान नहीं आया, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पार नहीं पाया। अब देखो तो एक मिनट का सत्संग क्लियर कर देगा, क्योंकि ये बार बार दिखाना अत्यावश्यक हो गया, जिससे हमारे हृदय का अंधेरा साफ होगा और मैल थोड़ा सा कितने रह जा साबुन बार बार लाना पड़ेगा, वो तभी वहां से हटेगा, जो मैला घना गंद हो गया हमारा कपड़ा। अब देखियो ये श्री देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, हनुमान प्रसाद पोदार और चिमन लाल गोस्वामी इसके संपादक हैं, और गीता प्रेस गोरखपुर से ये छपी है, प्रकाशक भी इसके ये हैं, वो संपादक थे प्रकाशक मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 28 पृष्ठ पे और 562 पृष्ठ पे कति दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कितना ज्ञान तो दुर्गा ने है, कितना ज्ञान ब्रह्मा विष्णु महेश ने है। ये देखिएगा स्कंद पहला और प्रश्न नंबर 28 28। यहां पर ब्रह्मा जी से व्यास जी ने पूछ, नारद जी से व्यास जी ने पूछा कि कौन सा देव है जो पूजा के योग्य है। नारद जी ने कहा महाभाग व्यास जी, इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। वो क्या है, किससे किया था? देवादि देव भगवान जगत के स्वामी लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौष्ठमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर दान करते हैं आदि आदि। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। मेरे पिता को बड़ा आश्चर्य हुआ तो उन्होंने पूछा, ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभो आप देवताओं के भी देवता, विष्णु को देवताओं के देवता नहीं भगवानों का भगवान कह रहा है ब्रह्मा जी, जगत के स्वामी, भूत भविष्य वर्तमान के जीवों के एकमात्र शासक हो, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हो और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन हो? मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा। अब उत्तर दे रहे हैं 1929 पृष्ठ पर भगवान विष्णु जी कि कौन देवता की पूजा करता हूँ, भगवान कौन से भगवान की, देवता माने भगवान, मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है, इन्हीं भगवती यानी दुर्गा भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ यानी इनकी पूजा करता हूँ। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरा कोई भगवान नहीं, कोई देवता नहीं। अच्छा आलिया और श्री विष्णु जी के ज्ञान का यूनों का मैं दुर्गा से ऊपर मत किसी को भगवान मानता नहीं और यही पूजा के योग्य है, मैं इसी की पूजा करता हूँ। अब दुर्गा कहती है कि वो ब्रह्म है पूजा के योग्य, वो तो ब्रह्म है उसकी पूजा करो, उसी का ओम नाम है और उसका उसकी साधना करो। ये देखिएगा ये सातवां स्कंद है अध्याय 36 है 562 पृष्ठ पे, देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञान उपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन है। देवी के द्वारा देवी जी कहने लगी उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है, यह बतलाया जाता है जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहे चर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्त है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है और किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश स्वरूप है, जो सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वह अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, वही सबके मन, वही सबका परम सत्य है। अमृत अविनाशी तत्व है सोम, उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेधन करो यानी उसको प्राप्त करो, ब्रह्म को मन लगाकर उसमें तन में हो जाओ। जो सोम में उपनिषदों में कथित महान अक्षर अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावना गुच्छित होकर उस बाण को खींचकर अक्षर रूप ब्रह्म की को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। परवण माने ओम तय उसका मंत्र है, धनुष है, और जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य का, यानी जीव जो है ओम मंत्र के जाप से और ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर जाप करे, सुमन करे, तो वो ब्रह्म कहाँ रहता है, वह सबका आत्मा, वह यह सबका आत्मा ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में रहता है। अब बताओ अब कभी अब परमात्मा कबीर जी की वाणी जो 600 साल पहले आप बोली थी और वही फिर आज से 200-250 वर्ष पहले सन 1727 में गरीबदास जी के कंप्यूटर में डाउनलोड कर दी थी और वो आज आपके समक्ष ये दास बोल रहा है, या प्रत्यक्ष हो रही है कि इन ब्रह्मा विष्णु महेश को भी कोई ज्ञान नहीं था ना दुर्गा को, ये ब्रह्म तक कहती है ब्रह्म की साधना करो। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक तक सभी नाशवान है, ये तो पुनर्वर्ती में है। और गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा जिसकी कृपा से तू शाश्वत स्थानम यानी परम शांति को प्राप्त होगा या वहां कोई कष्ट नहीं होगा और वो सदा रहने वाले लोक सत्य लोक को प्राप्त होगा। यही परमात्मा बता रहे हैं, जालम जुल्हा जारत लाई ऐसा नाद बजाया है, काजी पंडित पकड़ पछाड़े इनको जवाब नहीं आया है। सुर नर मुनि जन भेद न पावे दोहों का पीर कहाया है, शेष महेश गणेश्वर था के है जिनको पार नहीं पाया है, नौ अवतार हेर सब हारे जुल्हा नहीं हराया है। ये कहते हैं सारे अवतार भी लाग लिए परमात्मा को, अज्ञान में हरा नहीं सके वो। चर्चा आन पड़ी ब्रह्मा से चारों वेद हराया है, चारों वेद भी फेल कर दिए भगवान ने जब ब्रह्मा के साथ वार्ता हुई। कबीर परमेश्वर आते रहते हैं प्रत्येक युग में अग्नि ऋषि रूप में, क्योंकि वैसे तो प्रत्येक युग में एक एक नाम उनका होता है, फिर गुप्त रूप में आते हैं अचानक, वो उसमें अन्य रूप नाम रख लेते हैं। तो ब्रह्मा को जब मिले फिर पुनरा करके अग्नि ऋषि रूप से मिले थे, उन्होंने फिर पूछा, फिर सारे चारों वेद परमात्मा उसके खोल कर दर दिए कि ये तेरे वेदों में वो ज्ञान नहीं है, लेकिन ब्रह्मा कालवश परमेश्वर के उस ज्ञान को स्वीकार नहीं कर सका। मगर देश को किया पियाना दोनों दिन डुराया है, गोर कफन हम काठी दीजे चादर फूल बिछाया है, गैबी मंजिल मार्फत ओंडी चादर बीच नहीं पाया है, काशी वासी है अविनाशी जो नाद बिंद नहीं आया है। जब परमात्मा मगर स्थान से सह शरीर गए, दो चादरों के बीच में एक चादर नीचे बिछाई, उसके ऊपर फूल फल बिछा दिए थोड़े थोड़े, देखे दो दो इंच परमात्मा लौट के ऊपर के चादर ओढ़ ली, और फिर आकाश में कहा जाकर के देखो मैं सतलोक जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे जैसे शरीर वाला नहीं था। गैबी मंजिल मार्फत ओडी चादर बीच नहीं पाया है, काशी वासी है अविनाशी ही नाद बिंद नहीं आया है, ना गाड्या ना जारा जुल्हा शब्द अतीत समाया है, चार दाग से रहित है सतगुरु सो हमरे मन भाया है। अब एक तो मुसलमान तो कहते हैं हम गाड़ांगे यानी जमीन में उसका अंतिम संस्कार कराएंगे, जिनकी जो है ना या बनावांगे कब्र, और हिंदू ने कहते ना यो हमारा गुरु, हम इनको जलावांगे अंतिम सुहा करेंगे। तो परमात्मा कहते हैं ना गाड़ा ना जारा जुल्हा, ना गाड़ा ना जलाया वो दानक, वो तो शब्द अतीत समाया है जुल्हा, ना गाड़ा ना जारा जुल्हा शब्द अतीत समाया है, चार दाग से रहित सतगुरु सो हमर मन भाया है। हमारा भगवान कबीर जी है वो जब भी आता है ये किसी दाग में नहीं आता, जैसे चार प्रकार से अंतिम संस्कार करते हैं, एक तो जैसे कब्र बना दे नीचे मुसलमान भाई, हिंदू समाज सभा कर देता है जला देता है, और एक ऐसा समाज है कि वो जल प्रवाह कर देता है, बस यूँ कहें पशु पक्षी खा लेंगे, जीव जंतु खा लेंगे, और एक क्या करते हैं कि उसको जंगल में डाल देते हैं या एक अच्छा ऊपर एक मचान सा बना रखा है ऊंचाई, उसके ऊपर शरीर को डाल देते हैं, पशु पक्षी खा लेते हैं। तो कहते हैं उसको वायु दाग बोलते हैं, हवा में दाग, एक जल प्रवाह करने वाला जल में दाग। तो कहते हैं चार दाग से रहित सतगुरु सो हमारे मन भाया है, जो किसी भी दाग में ना आवे यानी हमारे अविनाशी है वो हमारे मन भाया है, वो हमारा भगवान परमात्मा है। मुक्ति लोक के मिले परगने अटल पटा लिखवाया है, फिर तागीर करे ना कोई धुर का चाकर लाया है, तकत हजूरी चाकर लागे सत का दाग दगाया है, सतलोक में सेज हमारी अवगत नगर बसाया है। गरीबदास जी इतने निर्भय हो गए कि मेरा तो सतलोक में ठिकाना हो गया, हमारी तो वहाँ सेज बिछ गई, हमारा तो वहाँ स्थान बन गया। और जब आपको ये पक्का दृढ़ हो जाए, एक दिन ऐसा समय आएगा आपके हृदय में पक्का न्यो समा जाएगा कि हम सचमुच सतलोक जावांगे, फिर आपने मरते आना डर नहीं लगा, क्योंकि अब आप इतना समझ जाओगे कि यो शरीर तो छुट्टेगा, यो तो रहेगा ही नहीं, चाहे कितना रो लियो चाहे पीट लियो चाहे कितने जतन कर लियो, यो तो जागा। और जब फिर जन्म हो गया या ब्रह्म मट्टी फिर शुरू हो जाएगी दुर्गति जो इस जन्म में हो रही, तो फिर आपके दिल में ओहो इस ज्ञान के आधार पर भक्ति की कमाई से आपकी आत्मा में ऐसी हवा भर जाएगी, ऐसी शक्ति भर जाएगी, आपका नुच्चा सा चढ़ जाएगा, कद मरूर कद छूटे पंडा यहाँ से सतलोक चलो। गरीबदास जी कहते हैं जैसे बालक राजी हो जाकर ना, छोटे से बच्चे ने पता लग जा छुट्टी होगी और मामा का ब्याह है, माँ जाएगी, तनु का आग्रह ओहो मामा का जाऊँगा मामा का जाऊँगा। तो गरीबदास जी ने इतने चाव से कहा है वाह वाह अमरपुर जाऊंगा, वाह वाह अमरपुर जाऊंगा, कतिनो खुश हो कह के इतनी खुशी से कह रहे हैं कि वो हो मैं तो अमरपुर जाऊंगा, कदे मरू नहीं सदा वहां सुखी रहूंगा। तो वो सब स्थिति आप सबके हृदय की हो जाएगी इस ज्ञान और भक्ति की शक्ति से। चंपा नूर तूर बहुमाती आन पदम झलकाया है, धन बंदी छोड़ कबीर गुसाई दास गरीब बधाया है। कि धन है मेरे परमात्मा, आपने आकर के अपने बच्चे दास को, गरीब दास को इस योग्य बना लिया। बोलो सतगुरुदेव की जय।